नमस्कार आदाब श्रोताओं, मोबाइल वाणी के बेहद लोकप्रिय और खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं वैसे मुद्दों के बारे में जिससे आपकी जिंदगी का सीधा सरोकार है, वैसी खबरें जो जिंदगी की आपाधापी में हमसे छूट जाती हैं या खबरों की सुर्खियां नहीं बन पाती। तो आइए सुनते हैं खबरें जरा हटके।
नमस्कार आदाब श्रोताओं, मैं अंजलि आज खबर लेकर आई हूं। मध्य प्रदेश में बढ़ता जल संकट, 165 बड़े बांधों में से 65 सूखे। मध्य प्रदेश में हालत यह है कि यहां के 165 बड़े जलाशयों में से 65 बांध लगभग सूख चुके हैं और 39 जलाशयों में उनकी क्षमता का 10% से भी कम पानी शेष बचा हुआ है। भूमिगत जल स्तर कम होने से हैंडपंप और ट्यूबवेल भी पूरी क्षमता से पानी खींच नहीं पा रहे हैं। प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर भारत का सबसे बड़ा बांध इंदिरा सागर बांध बनाया गया है। इसकी पानी भराव की अधिकतम क्षमता 9740 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसकी तुलना में वर्तमान में उसमें केवल 2104 MCM पानी बचा है और बांध में पानी के इस स्तर को हम बरकरार रखे हुए हैं। प्रदेश के कुल 378 स्थानीय नगरीय निकायों में से 11 नगरीय निकायों में 4 दिन में एक बार पानी की आपूर्ति हो पा रही है, 50 निकायों में 3 दिन में एक बार तथा 117 निकायों में एक दिन छोड़कर पानी की आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से भी जल संकट की खबरें आ रही हैं, क्योंकि जमीन के नीचे के पानी का स्तर कम होते जाने से हैंडपंप और ट्यूबवेल अपनी पूरी क्षमता से पानी नहीं खींच पा रहे हैं। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 5.5 लाख हैंडपंप और 15,000 ट्यूबवेल लोगों की पानी की जरूरत पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। लगभग 4% हैंडपंप और ट्यूबवेल काम न करने की स्थिति में हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी पर बने बरग्गी बांध में पर्याप्त पानी है। जल संरक्षणवादी केजी व्यास ने कहा कि नर्मदा नदी के पुनरुद्धार के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पास यह सही समय है, क्योंकि पानी की कमी प्रदेश को लगातार परेशान कर रही है। उन्होंने कहा, अगर प्रदेश सरकार वास्तव में नर्मदा को पुनर्जीवित करना चाहती है तो उसे 41 सहायक नदियों के पुनरुत्थान के लिए काम करना चाहिए।
धन्यवाद अंजलि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और मैं बताने जा रहा हूं कि मध्य प्रदेश की एक मंडी में तुलाई के इंतजार में किसान ने दम तोड़ दिया। कुछ महीने पहले ही मई माह में मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के लटेरी में अपनी उपज का तुलने का इंतजार 4 दिन से कर रहे किसान मूलचंद को गुरुवार को मौत हो गई। 65 साल का यह किसान सोमवार को मंडी में अपने अनाज के साथ आए थे। किसान चतुर्भुज चौरसिया का कहना है कि ये 5 तारीख को मंडी आए थे, इनके पास अपने उपज को बेचने के लिए घर का ट्रैक्टर नहीं था, इसलिए किराए का ट्रैक्टर लेकर आए थे। लेकिन 3 चक्कर लगाने के बाद भी इनके उपज की तुलाई नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी इनको हर बार ट्रैक्टर ट्राली वाले को 2,000 रुपए किराया देना पड़ा। किसानों ने प्रशासन को मांगों की एक सूची भी प्रस्तुत की, जिसमें मृतक किसान के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के साथ ही समर्थन मूल्य के खरीदी केंद्र पर किसानों की समस्याओं को जल्दी दूर करने की मांग रखी गई। जिला प्रशासन ने मृतक किसान के परिजनों को तत्काल 4 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है। देखते हैं कि किसानों की हालत कब सुधरती है।
शुक्रिया राजीव जी। और मैं मधु आज जिस विषय को लेकर आई हूँ वो है आंतरिक पलायन में महिलाओं की अदृश्य भागीदारी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का झुकाव पूरी तरह से शहरीकरण की ओर है। वर्तमान में लगातार शहरी जनसंख्या में इजाफा हो रही है और वर्ष 2031 तक यह 600 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। लोग गांव, कस्बों एवं छोटे शहरों से लगातार दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में आंतरिक पलायन कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश में आंतरिक पलायन करने वाले कुल जनसंख्या का 70% आबादी महिलाओं का है। आंतरिक पलायन करने वाली महिलाओं की संख्या में इजाफा होने के पीछे मुख्य कारण है विवाह से प्रेरित होकर पलायन करना। साथ ही वर्ष 2011 के जनगणना के एक विश्लेषण से यह बात सामने आई कि रोजगार के लिए पलायन करने वाली महिलाओं की संख्या में 101% की वृद्धि हुई। कम वेतन और अमानवीय परिस्थितियों के अलावा कम कुशल महिला प्रवासियों को अक्सर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझने वाला काम ही मिलता है। बेंगलुरु में एक परिधान कंपनी में काम करने वाले श्रमिकों में से 90% प्रवासी महिला श्रमिक शामिल है। ये महिलाएं अक्सर सांस की बीमारी, तपेदिक, पीठ दर्द, अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों जैसे कि सफेद पानी का आना, अनियमित महावारी और अत्यधिक रक्तस्राव से ग्रसित रहती हैं। सरकार को एक समावेशी विकास के लिए राष्ट्रीय शहरी नीति को माइग्रेशन और प्रवासियों की जरूरतों को एकीकृत करना चाहिए, विशेष रूप से महिला प्रवासियों की आकांक्षाओं, उनका सशक्तिकरण और शहर में मिलने वाले बेहतर बुनियादी ढांचे और लिंग अनुकूल सेवा वितरण का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए।
तो दोस्तों ये थी पिछले दिनों की कुछ खास खबरें। अगर आपके आसपास या आपके क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो जरा हटके हैं तो हमें जरूर बताएं। अपने मोबाइल में नंबर 3 दबाकर और साथ ही इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए अभी दबाएं नंबर 5। तो सुनना न भूलें हर बुधवार और शनिवार शाम 4 बजे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरें जरा हटके।